शरणं कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञे राधे तं नयामि। चतुर्थ में न धनम न जनम न सुंदरी कवितावा जगदीश कामये मम जन्म निजन्म निश्वरी तद भवता भक्तु रहे तुके। यह रुचि पूर्वक भजन। रुचि कब होगी भगवान के भजन में? रुचि कब होगी? जब न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये। हे जगदीश, मैं धन, पुत्र, स्त्री, बहन, भाई इत्यादि जन, सुंदरी कविता, पांडित्य, प्रतिष्ठा इत्यादि में कुछ भी नहीं चाहता। मैं जन्म जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति हमारे अंदर हृदय में आए। जिस समय ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि निष्ठा हो गई, समाप्त। जब तक भजन में निष्ठा नहीं होगी तब तक ये सब तरह तरह की कामनाएं और अनर्थ हृदय में रहेंगे। इसलिए जिसकी निष्ठा हो गई इसके बाद की ये चीज है, भजन में स्थिरता हो गई। कल इसके संबंध में हमने बतलाया था। इसलिए यदि भजन करना है और भजन में उन्नति करना है तो धन, जन, सुंदरी कविता, सुंदरी कविता माने अच्छा, अच्छी कविता, पांडित्य इत्यादि मैं नहीं चाहता हूँ। जन्म जन्म में आपकी हमारे प्रति अहेतुकी, उनके प्रति जो अहेतुकी भक्ति है बिना किसी हेतु के, वो हमारे हृदय में आए। गृह द्रव्य, गृह का धन, घर का धन संपत्ति, शिष्य के लिए शिष्य भी बड़ा भारी एक धन है। एक शिष्य आपको छोड़ करके दूसरे के यहाँ चला जाएगा तो हृदय में सेल विद्ध जाता है और गुरुओं में इसीलिए लड़ाई झगड़ा लगता है। इसको भी संपत्ति माना है। गृह द्रव्य, पशु, धान्य आदि धन, स्त्री, पुत्र, दास, दासी, कुटुंब, जन, काव्य, अलंकार, अति सुंदरी कविता, पार्थिव विषय मध्य, ये सब वार्ता, ये सब पार्थिव चीज है। यदि ये अनुकूल नहीं है तो ये सब कुछ मत चाहो, इसलिए इनकी चाहना नहीं होनी चाहिए हृदय में। तब मान लिया कि भगवान की कृपा से या जैसे हो पूर्व जन्म की इच्छा से हमारी स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, यदि भगवत भक्ति का अनुकूल है तो ठीक है, पांडव जैसा उसको ग्रहण करो। धन संपत्ति को भी भगवान की भक्ति में लगाओ, अपने भोग में लगाया तो मरा, अपने भोग में एक पैसा मत लगाओ। यही सब पाई बार आस नहीं, इसलिए अनुकूल हो तो गृहस्थ लोग कुछ रख सकते, त्यागी लोगों को इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमेर प्रभाव स्वभाव, जहाँ प्रेमेर संबंध हो, से ही माने कृष्ण मोर नाही भक्ति बंध। प्रेम का एक स्वभाव है भक्ति का स्वभाव है, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति हो गई या प्रेम हो गया तो ये मानता है कि कृष्ण की भक्ति हमें नहीं हुई, कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, वो ये इस चीज को समझता है, अनुभव करता है। यहाँ तक कि सबसे प्रेम की प्रतिमूर्ति कृष्ण की श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि हमारे अंदर में प्रेम की गंध नहीं है। ये श्लोक जो है, न प्रेम गंधस्ति तरापि मे हरौ क्रंदाम्य सौभाग्य भरम प्रकाशितम वंशी बिल्लास्यानन अवलोकनम बिना विभत्म जत प्राण पतंग कान। राधिका जी कहती हैं, और उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु राधिका के भाव से बतला रहे हैं, मेरे अंदर में प्रेम की गंध नहीं है, प्रेम भी नहीं है तो गंध, गंध तो है ही नहीं तो प्रेम कहाँ है। यदि मैं रोता हूँ, लोग देखते हैं, ये तो प्रतिष्ठा की कामना से रो लेता। यदि सचमुच में प्रेम होता तो पानी के बिना जैसे मछली प्राण प्रत्याग कर देती है, वैसे हम भी प्राण प्रत्याग करते हैं, किंतु कहाँ होता है। कृष्ण के दिरे में हम मर नहीं जाते, कृष्ण से कितना दिन का बिछड़न हो गया, अभी तक मिले नहीं कृष्ण और अभी तक जीवित रह रहा, तो कृष्ण के प्रति प्रेम क्या। प्रेम मछली का वो भी लौकिक है, लौकिक प्रेम में जब इतना है जो मछली बिना पानी के एक मिनट नहीं रह सकती, प्राण को छोड़ देती है, और हम भक्ति के बिना और रह रहे हैं तो ये प्राण हमारा, हमारे भक्ति कहाँ है। इस चीज़ को हम लोग अनुभव अभी नहीं करेंगे, कब अनुभव करेंगे, यदि कुछ भक्ति होगी तो तब समझेंगे कि यथार्थ जो भक्ति है वो नहीं। कृष्ण के प्रति थोड़ी सी भी किसी को भक्ति है तो देख करके शुद्ध भक्त कहते हैं कि इसका जीवन धन्य वही जन्म लू। गोपियां मृग जन्म की वांछा करती हैं, बादल बन जाना चाहती हैं, वृंदावन की पक्षी बन जाना चाहती हैं, सुख इत्यादि गायें बन जाना चाहते हैं ब्रज की गोपियां। मृगा होकर के कृष्ण से हम अंततः निकट जाकर के उनका दर्शन तो कर सकते हैं। एक वृंदावन में वृक्ष होने पर कृष्ण उसके निकट आएंगे तो उसकी छाया देंगे हम, हमारा जीवन सफल होगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप लोग विचार करके देखिए, ये भक्ति है कहाँ हमारे अंदर, कृष्ण के लिए क्या करते हैं हम, जब देखेंगे। इसलिए जहाँ पर प्रेम है, प्रेम का स्वभाव है, भक्ति का स्वभाव है, मानेगा जी हमारे अंदर में शुद्ध भक्ति नहीं। तावत भयम द्रविण देह सुहित निमित्तम शोक प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ तामन मम इति असद्वग्रह आरती मूलम जामन त्यंग्रिम अभयम प्रवणित लोक। हमारे अंदर में भय कब तक है, जब तक कि द्रविण धन देह सुहित इत्यादि के लिए शोक और स्प्रिया वर्तमान, उनके प्रति आसक्ति है। जिस दिन भगवान के चरण में आसक्ति हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर के लिए, शरीर से संबंधित वस्तुओं के लिए जैसे स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि, उनमें आसक्ति है, तब तक शोक मोह इत्यादि हैं, और जिसमें में भगवान के चरण में प्रीति हो जाएगी ये सब। अभी एक महिला आकर के रो रही थी जो उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत उनको पीड़ा हो रही है, मरने के करीब हैं, रो रही है। तुम क्यों रो रही, तुम तो नहीं मर रही, क्यों रो रही? किस लिए? उसके प्रति आसक्ति है। यही आसक्ति यदि भगवान के चरण में हो जाए तो काम बन जाए, किंतु नहीं होती ऐसी आसक्ति। भक्त लोग साधन के द्वारा इसको कर लेते हैं, वो तो एक साथ जन्म करके आए नहीं, एक साथ में जाएंगे नहीं, उनकी गति अन्य हमारी गति अन्य, तो भी आसक्ति ऐसे शरीर में आसक्ति। इन सब चीजों को अच्छी तरह समझ करके भगवान का भजन करो। द्रव्य देह सुहिन निमित्त शोक भय स्प्रीह पराभव आर लोभ अतिशय आमी मम आरती मूल असत आश्रय जत दिन नहे तो पाद। जब तक कि भगवान के पाद पद्मों का आश्रय हम नहीं लेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, तब तक ये संसार में जो दुख है अनिवार्य है। आसक्ति भी रहेगी, आसक्ति के वजह से हम दुखी रहेंगे। हरिरेव यथा तरुण मूल, इसकी व्याख्या मैंने की है पहले। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर ईश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राध्य नवज्ञा कदाच। हरे ही सबके आराध्य हैं, सब देवों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, किंतु उनसे जो सेवक वर्ग उनके हैं इतर ब्रह्मा रुद्र इत्यादि नवज्ञा का उनका अवज्ञा न मत करो, अवज्ञा मत करो, किंतु उनको पृथक रूप में भगवान भी मत मानो। शंकर जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को, देवी को, ये सबको ईश्वर मत ना मान करके भगवान का सेवक मान। शंकर को, हनुमान जी को, देवी को अपना गुरु मान सकते हैं, किंतु यदि ईश्वर मानेंगे तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए उनकी अवज्ञा मत करो। रास्ते पर चैतन्य महापुरुष सबके मंदिर में गए, उनको प्रणाम किया, किसी की अवज्ञा नहीं की, इसलिए अवज्ञा मत करो, निंदा मत करो, किंतु उनको भगवान भी मत मानो। एक झाड़ूदार को, उनको भी अवज्ञा मत करो, किंतु उसी को राष्ट्र अपनी राष्ट्रपति मान लो, ये भी ठीक। अपनी माँ का पति मान लो, ये ठीक नहीं, किंतु अवज्ञा भी मत करो। जो जिसका अधिकार है उसके अनुसार में उसको आदर दो, तब तो भक्ति हो। ये सारी विश्व की चीजें हैं, भगवान की विभूतियां इनमें हैं। सूर्य, चंद्र और जितने तेजस्वी सब चीजें हैं भगवान की विभूति हैं, यथा योग्य उनको सम्मान करो, किंतु भगवान है ये ऐसा नहीं। शिष्यान नैव अनुबध्नीयात् ग्रंथा नैव अभ्यासेत बहून न व्याख्यायम उपजंजीत नारंभेत क्वचित। बहु शिष्य लोभेते अयोग्य शिष्य करे, शिष्यों के लोभ से अयोग्य लोगों को शिष्य बनाते हैं। यदि अयोग्य माने क्या, अयोग्य माने जिनके अंदर में श्रद्धा नहीं, भगवान की भक्ति नहीं चाहते हैं, वो गुरु के पास आते हैं जो हमको धन मिल जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, सांसारिक जो कष्ट है ये दूर हो जाए, इसलिए गुरु के पास में आते हैं, भगवान को नहीं चाहते, ये सब अयोग्य लोग। धन संपत्ति दुख विनाश इत्यादि के लिए बस इसके लिए आए कि मैं मेरे कृष्ण के प्रति प्रीति हो और संसार में जो दुख है सदा के लिए दूर हो जाए, केवल इस भाव से। हम लोगों के समय में गुरुजी के दो शिष्य परस्पर लड़ रहे थे, दोनों जलती हुई लकड़ी का अंगार लेकर के एक दूसरे को मारने जा रहे थे और सब लोग छुड़ा रहे हैं और गुरुजी चुपचाप बैठे। तो किसी ने जाकर के कहा, पूज्यपाद बामन महाराज जी, जे ये लड़ रहे हैं आप यहीं पर बैठे हुए हैं, तो उनको लड़ लेने दो, ये तो मामला का घर कोर्ट नहीं है और मैं जज नहीं यहाँ पर हूँ जे कौन गलती किया नहीं किया, इनको लड़ लेने दो, इसके बाद में देखा जाए। मैं यहाँ हूँ परमार्थ देने के लिए, यदि भौतिक विषयों के लिए लड़ता है तो इसके लिए मैं गुरु नहीं हुआ, मैं उनको परमार्थ देने के लिए। तो ये जो उससे च्युत होकर के लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे, अपने कर्मों का फल भोग करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, मैं समझूंगी हमारे शिष्य ही नहीं है, इसलिए अयोग्य शिष्य नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उसके वशीभूत हो करके गुरु और उनके रूप करने लग जाएगा, उनकी उनकी बात को मान लेगा और सत्य से भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए अयोग्य शिष्य न करें। परमार्थिक हो, परमार्थिक उसको भगवान का प्रेम चाहिए तब तो ठीक है, और नहीं तो शिष्य करेंगे कुछ दिनों के बाद में आकर। हमारे यहाँ एक शिष्य आया था नवदीप में, करीब करीब 25-30 वर्ष का लड़का, बड़ा सुंदर सुकांत था, बड़ा कर्मठ और पढ़ा लिखा, मठ में आकर के खूब सेवा करने लगा, दिन रात सेवा करता था, सबको सेवा से मुग्ध कर दिया। अब तैयारी हो रही थी कि 2-4 दिन में इसको गुरु जी से शिष्य करा दिया जाए, कुछ लोग थे उसको जे उसको शिष्य हो जाए। इतने में एक दिन बड़ी भारी जोर से आंधी और वर्षा आई, उसमें कुछ पेड़ गिर गए इधर उधर, और इतना अंधकार हो गया, बिजली भी चली गई। सवेरे पुजारी जब इसके बाद में गया खोलने के लिए मंदिर, तो देखा जी मंदिर तब हमको खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से ही खुला हुआ है, वही परिश्रम कर अपने आप खुल गया है। भीतर का देखा जी ऐसे बक्सा कहाँ, सब बक्से नहीं है, कहाँ गए सब बक्से, प्रणामी का बक्सा वो तो है ही नहीं, और सब चीजें हैं, और ठाकुर जी का मुकुट भी नहीं है, वो बक्सा ही गायब है। इसके बाद में चाल पाल हो गई बड़ी, इधर उधर खोज खबर, थोड़ी देर के बाद में पुलिस में देने का ये विचार होता, गुरु जी ने कहा ठहरो भाई, पुलिस में भी मत दो, ठहर हो जाओ। अच्छा वो जो लड़का आया था कहाँ है, हम लोगों ने किसी ने कहा जो वो लड़का कहा है, खोजा गया तो मिला नहीं, मामला ऐसे ही रहा। लोग गए इधर उधर मंदिर के पिछवाड़े में, तो देखा जो बक्सा तो ऐसा पड़ा हुआ है, प्रणामी का बक्सा में से केवल पैसे नहीं है और बाकी सब चीजें ठीक है, कुछ नहीं गया, कपड़ा लत्ता सब है। 2 दिन के बाद में चिट्ठी आई एक, आज तक मैं कभी भी इतना निराश नहीं हुआ, हमारी 1 महीने की कमाई व्यर्थ गई, इसमें मैं लाखों रुपए उपार्जन कर सकता था, किंतु हमको 1 पैसे 1 कौड़ी भी नहीं मिली। यहाँ तो सब जाली ठाकुर जी के कपड़े और अलंकार और मुँह, मैंने सोचा जे ये सोने का होगा, और इतना परिश्रम किया बेकार का गया, पिछले मैं इन सब छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसे शिष्य 10-5 मिल जाएं तब तो गुरु जी की बात ही क्या, साक्षात एकदम वैकुंठ की प्राप्ति उनकी हो जाएगी, इसलिए देख सुन करके करें, ये गुरु के लिए उपदेश है। इसलिए गुरु की इसमें बतलाया गया है, जिसको जातरति हो, जातरति मैंने क्या, श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, और आसक्ति के बाद में रति होती है, ऐसी रति जिनके हृदय में उदित हो गई, ऐसा व्यक्ति शिष्य करे, दूसरा न करे। अब इस कसौटी पर यदि खरा उतारा जाए तो जगत में ऐसे रति वाले शिष्य करते नहीं, जिनको रति हो गई है वो ऐसा शिष्य किस लिए करेंगे, वो तो साधन भजन में मत रहेंगे। बहुत से ऐसे जो दयालु हैं वो कभी कदाचित मध्यम अधिकार में आकर कर सकते हैं, किंतु विरले, सभी नहीं ऐसा करेंगे, इस नहीं तो शिष्यों के अनुबंध में आ जाएंगे, अनुबंध माने क्या, वशीभूत हो जाएंगे। शिष्य गुरु जी के कान में रोज देता रहा, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, अच्छे लोगों को भड़काएगा गुरु जी को उनके प्रति, और उनको हटा करके फिर अपने आप बैठ जाएगा और स्वास्थ्य सिद्धि करके संसार की चीजें और चला जाएगा, और अच्छे जो लड़के थे वो सब चले जाएंगे, यही सब होता है। हम लोगों के आचार्यों की परंपरा में देखा, मध्वाचार्य का रामानुज के शिष्य कैसे उद्भव, मध्वाचार्य की परंपरा में देखे विजय ध्वज इत्यादि हैं, व्यास तीर्थ हैं, अक्षुभ्य तीर्थ हैं, कैसे अद्भुत। अरे शंकराचार्य जी के शिष्य भी कैसे, और की तो बात क्या। शंकराचार्य के एक शिष्य थे, 4 शिष्य थे उनके, उनमें सबसे जो पढ़े लिखे नहीं थे कुछ नहीं, किंतु गुरु की सेवा करते थे, कपड़े धोना उनका, रसोई बनाना उनका, सब काम करते थे। जब व्यास आश्रम में गए ये शंकराचार्य, तो ये 4 शिष्य का अतिरिक्त और कुछ विशेष इनके साथ थे, और वहाँ पर वेदांत, निर्विशेष वेदांत का वो पढ़ा रहे थे, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये सब उनको पढ़ा रहे थे। उस समय में और सब शिष्य आ गए, धुरंधर धुरंधर कौन कौन, सुरेश्वर आचार्य, मंडन मिश्र, हस्तामलक, ब्रह्म तत्व को ऐसे हस्तामलक के समान देखने वाले, ये सब लोग आ गए। बोले जी गुरुजी आरंभ कीजिए, और वो कर नहीं गए। थोड़ी देर के बाद में देख रहे थे, पुकारा अपने से, अरे तू कहाँ है, अभी तक आया नहीं। वो उनके कपड़े सुखा करके और ला रहा था, बीच में नदी थी, उसको जहाँ पर पुल बंधा था वहाँ से हो करके 2 माइल का रास्ता के 1 माइल का रास्ता होकर आना था। और जानते हैं बद्रिकाश्रम में गंगा नदी कितने तेज प्रवाह के साथ में बहती है, धारा इतनी तेज है कि उसमें यदि एक छिनका भी पड़ जाए तो 2 टुकड़े हो जाए। और उधर में वो था और ये पुकार रहे हैं, अरे तू आया नहीं जल्दी से। और वो लोग कहते हैं कि आप आरंभ क्यों नहीं करते, वो मूर्ख क्या समझेगा। तो वो जल्दीबाजी में ये नहीं देखा जो नदी में पानी है या इतनी तेज धारा है, वहां से एकदम कूदा नहीं, साधारण जमीन की भांति उसको पार करने लगा चलते हुए, और जहां जहां पैर रखे वहीं पर कमल उगाए, और उसी पर पैर, कमलों पर पैर रखता हुआ वो तो देख रहा है उधर गुरु जी की तरफ में, और कमल आते जा रहे, उस पर पैर रखता चला जा रहा है, जहां पैर पड़ता वहीं पर कमल उग जाता, और एकदम धड़ाधड़ पार होकर के चला गया। वहां जाकर के उन्होंने कहा देरी क्यों लगाई। और इतने में इतने सुंदर सुंदर श्लोकों में अलंकार युक्त अनुप्रास इत्यादि देते हुए इतना कठिन तत्व वहां पर बतलाया, ये सब लोग समझ, अरे ये क्या, हम लोग इसको मूर्ख समझते थे, और ये इतना बड़ा भारी पंडित, और ये उन्हीं लोगों में सबसे यही पद्मपाद हुए। पद्मपाद किस लिए, उसे पार करके आए, इसलिए उसका नाम पद्मपाद हुआ। सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र थे, वो सुरेश्वराचार्य हुए। और ऐसे ऐसे ये सब लोगों का कैसे कैसे शिष्य, ऐसे ही शुद्ध भक्ति के लिए जो आए वो तो शिष्य, और नहीं तो उनको कह दो चले जाएं रमन रीति में, इधर उधर बहुत गुरु हैं वहां पर जाए। कभी कभी किंतु ऐसा हो जाता है, इसलिए इससे बचे रहने चाहिए। इसलिए गुरु को भी वैसा होना चाहिए, जातरती तब उसके कृपा से भक्ति होगी, और नहीं तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। कहा जे बेटा जैसे तैसे कुछ रुपया लाओ, ये करो, और दलाली में तुमको यदि 5 शिष्य लाएगा तो 5 शिष्य से जो रुपये मिलेंगे उसका 50% तुमको देंगे और बाकी हमारे पास में रहेगा। ऐसे गुरु शिष्य ये सब भजन परायण नहीं होते, इसलिए ये बतलाया शिष्यात् न अनुबध्नीयात्। शिष्य के मोह में जाल में पड़ करके भक्ति से वंचित न रहो, उसे बंध मत हो। ग्रंथ नैव आरंभ अभ्यासात्, अर्थात भक्ति विरोधी जो शास्त्र हैं जिसमें भक्ति की बात नहीं, ऐसे शास्त्रों का अनुशीलन मत करो। अभी देखेंगे तो किसी किसी के पास में ज्योतिष के ग्रंथ भी होंगे, हाथ की रेखाएं कैसी हैं, लोगों का हाथ दे करके पैसा ले, ये भक्ति का विरुद्ध है। ये सब चीजें ग्रंथ ना पढ़े और न व्याख्या उपजिन जी है, व्याख्या इत्यादि के द्वारा क्या बंदर है क्या। यदि व्याख्या के द्वारा कीर्तन के द्वारा पैसा लेते हैं, कीर्तन किया हमको 400 रुपया चाहिए, भागवत पढ़ेंगे हमको भागवत पढ़ने पर, यदि पढ़ूंगा आपको 50,000, 10,000, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक हाँ आजकल तो 10-5 लाख भी कोई बात नहीं, ये क्या चीज है। उसके द्वारा जीवन धारण मत करो, उसके द्वारा भक्ति को, नाम संकीर्तन को, भागवत को बेचो मत, बेचो, बेचने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है करो, किंतु भागवत पढ़ करके कुछ पैसा लेकर के जीविका उपार्जन करेंगे आपका सर्वनाश हो जाएगा, भक्ति तो जाएगी ही, उल्टा भगवान के चरणों में अपराध हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज से बचना तुम लोगों के लिए भी कह रहे हैं। कहीं जाना ये मत कहना जैसे हम भागवत पाठ करेंगे तो हमको कुछ देना, उसे भक्ति के प्रति अपराध हो जाए। कीर्तन में कभी भी ऐसा मत कहना जो हम कीर्तन करेंगे तो हमको कुछ पैसे चाहिए, खबरदार मत कहना। बल्कि वहाँ पर प्रसाद नहीं ना, उनसे कहना ठाकुर जी का प्रसाद जो एक बताशा हो एक तुलसी पत्र वो दे देंगे, वही हमारे लिए। इसे लोगों के हृदय में श्रद्धा होगी, भगवान के प्रति भक्ति होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। और यदि भागवत के लिए पैसा लिया या कीर्तन के लिए पैसा लिया तो भक्ति एकदम संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना। क्योंकि यदि किसी ने ऐसे ही दे दिया बिना मांगे भी और अपने परिवार के लिए लगाया तो तुम मरा। यदि भगवान की सेवा में लगाया तब तो ठीक है, भगवत सेवा में। इस चीज को सब समय ख्याल रखो यदि शुद्ध भक्ति चाहते हो। तस्मात् के मनसा भगवान शाश्वतांग पति श्रोतव्य कृत्य पितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यं। इसलिए श्रीमद्भागवत में बतलाया गया है, सुखदेव गोस्वामी जी प्रहलाद उनको परीक्षित महाराज जी को बतला रहे हैं, एकेन मनसा अनन्य भावे ते करो श्रवण कीर्तन। श्रवण और कीर्तन अनन्य रूप से करो, कृष्ण का ही श्रवण और कीर्तन स्मरण, और कृष्ण के लिए ही अपना साधन भजन अपने लिए कर रहे हो ये कभी खबरदार मत सोचो। किस लिए कर रहे हैं? अधिकांश लोग में हमसे पूछते, पहले तो पूछते थे कि आप जो भजन करते हैं स्वार्थ के लिए ही, तो अपने लिए कुछ चाहते हैं तभी तो भगवान का भजन करते हैं। हम लोग कर्म करते हैं भगवान की से चाहते हैं, तो ये भी तो चाहना हुआ। नहीं, पानी पीने से जीवन धारण होता है, और वही पानी में यदि जाओ अगाध पानी में तो डूब करके मर जाएगा। इसलिए पानी का जो स्वभाव है उसी तरह से जीव मात्र का स्वभाव है भगवान के प्रति भजन करना, उनकी सेवा करना। इसमें स्वार्थ नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हुआ तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। नाम रूप गुण ध्यान कृष्ण आराधन संग संग अनर्थना से जत्न कर भक्ति लता फलदान करीबे सत्व। इसलिए अनन्य रूप से बिना हेतु के बिना कामना के भगवान का भजन करो, नाम रूप गुण कीर्तन श्रवण कीर्तन करो, और साथ साथ में अनर्थ की निवृत्ति हो इसके लिए चेष्टा करो। जो लोग अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करते लाख जन्म में भी भगवान का प्रेम उनको नहीं मिलता। कैसे करें? अपनी चेष्टा से नहीं, नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के हरि कथाओं को श्रवण करके कीजिए, भगवान का शरणागत होइए, भगवान की कृपा से हो जाएगा। इसीलिए बतलाया बहुत चेष्टा करने पर भी योगी लोग अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, किंतु भगवत भक्त लोग भगवत आराधना से उनका शरणागत होकर अनायास ही उस चीज को ग्रहण कर लेते, मन एकाग्र अपने आप हो जाता है। यदि भगवान का भजन करना चाहते हो तो याद रखो अलब्धे विनष्टे बा भक्षाच्छादन साधने अव्यक्लवमति भूत्वा हरि रेमो धिया स्मरे। किस लिए पढ़ रहा हूं? हम लोग जानते हैं तभी उसमें प्रतिष्ठित नहीं होते, तभी बार बार कहने से भी यदि हो जाए कुछ अलब्धे, कोई चीज हम चाह रहे हैं वो लाभ नहीं हुई, उसके लिए शोक भय मत करो। विनष्टे, कोई चीज हमारी है नष्ट हो गई, उसके लिए शोक मत करो। भक्ष आच्छादन साधने, भोजन के लिए या आच्छादन के लिए शोक मोह मत करो। अपने अपने आराम के लिए दूसरों को कभी कष्ट मत दो। आ रहा है समझ में? अपने आराम के लिए दूसरों को कोई कष्ट मत दो यदि भजन करना चाहते हो। अब विक्लव मति, भक्ष आच्छादन सहजे न पाए, यदि किस प्रकार से आपने आपका भोजन नहीं मिला या कपड़ा नहीं मिला किसी कारण से, अथवा कोई चीज रहने पर भी हमसे चली जाती है, नमासिक जो व्यक्ति हैं उसके लिए तनिक भी चित्त में अशांत नहीं बोध करते, अशांत नहीं होता।
चित्त चंचल नहीं होता, उसके लिए दुख प्रकाश नहीं करता। कोई भी चीज इस संसार में नष्ट हो जाए या मिल जाए उनको, या भोजन नहीं मिला किसी कारण से, चित्त ठीक रहना चाहिए, विशेष करके भजन साधन जो परायण है उनके लिए। अनायास अपने आप उपस्थित हो जाने पुरुष को ग्रहण करें, जो चीज जैसी मिल जाती है। हमारे गोविंद कुंड में गोवर्धन के पास में एक महात्मा रहते थे, उनकी इच्छा हुई कि आज मैं फुटेहरी खाऊंगा। फुटेहरी जानते हैं, जिसको आप लोग इधर में होता है रोटी बना करके घी में उसे मल करके चूरमा, चूरमा खाऊंगा, दाल दाल चूरमा खाऊंगा, दाल बाटी मैं खाऊंगा, उनकी इच्छा हुई। अच्छा, बड़ी चेष्टा से इधर उधर से खोज करके घी ले आए, आटा लिया, बूरा लिया, सब ले करके बड़ी परिश्रम से उसको बनाया। बनाने के बाद में जब सब ठीक ठाक हो गया, घी में रगड़ करके, आटे को गूंथ करके, फिर उसको सेक करके, फिर उसको चूर्ण करके, फिर आटे में उससे घी में मल मल करके वो कैसे बाटी बनती है, वो बाटी बनाया, उसमें बूरा इत्यादि मिला करके उसकी सुगंध निकल रही थी और बड़ा मीठा बहुत सुंदर स्वादिष्ट बना दाल बाटी। जब खाने का समय हुआ तो भगवान को उन्होंने अर्पण किया, अर्पण में मन नहीं लग रहा था, मन चंचल था ना, मन चंचल था, इसलिए जल्दी से जल्दी पूरा मंत्र नहीं करके आधा ही मंत्र कहकर जल्दी से भोग लगाया और भोग लगा।